कॉन्सेप्ट जो है, जो हम बात करते भी रहे हैं, वो बिल्कुल वाज़े हैं कि इंसान जो कुछ भी करता है वो अपने ही लिए करता है। यानी जो इंसान इज्तमाईयत में भी काम कर रहा है वो हकीकतन अपने लिए कर रहा है। कि अगर फॉर एग्जांपल इमाम खुमैनी ने इतनी मेहनत की और बज़ाहिर ये किया वो किया, मतलब ही डिड नथिंग एक्सेप्ट फॉर हिमसेल्फ। तो ये बात हमको समझ में अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए कि जब हम इज्तमाईयत की बात करते हैं तो ये अपने और दूसरे का मसला नहीं है। इज्तमाईयत का मतलब ये होता है, अगर आप और ज़्यादा याद करें, जब मैंने शुक्र की तारीफ़ बयान की थी, कि इज्तमाईयत का मामला ये होता है कि अल्लाह ने मुझको एक नेमत अता की और उस नेमत का शुक्र ये है कि मैं दूसरे इंसानों को भी उसमें शरीक करूं, उसके फ़वाद में साथ मिलाऊं। अल्लाह का मैं बंदा हूं, अल्लाह का बंदा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि अल्लाह के दूसरे बंदों को भी खुदा की तरफ बुलाऊं या अच्छाई और नेकी की तरफ दावत दूं या लेके चलूं। ये तमाम चीज़ें यूं बनती हैं, यानी कि ये यहाँ के चैरिटेबल बिजनेस की तरह नहीं है। मतलब इनमें और हम में यही तो फ़र्क है, यानी दीनी फिक्र में और गैर दीनी फिक्र जो खिदमत करती है इंसान की, उसमें यही फ़र्क है कि वो कभी अगर बहुत ज़्यादा मुखलिस भी हैं तो वो दूसरों को देख रहे होते हैं। दीनदार इंसान सिवाय खुदा के किसी को नहीं देख रहा होता, ठीक है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कयामत के कॉन्टेक्स्ट में जो आपने और मैंने बात की, कि देखें अगर आपने किसी के लिए कोई काम किया, ठीक है, पूरे खलूस से कुर्बतन इलल्लाह किसी को हिदायत की कोशिश की, उसने आपकी बात नहीं सुनी, तो आपको कोई मसला थोड़ी है इससे, आपका अजर महफूज है। और इस चीज़ को कुरान ने बिल्कुल वजाहत से बयान कर दिया, वो अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि और नहीं है इंसान के लिए मगर जो उसकी कोशिश है। इंसान के लिए कोशिश का अजर नहीं है, इंसान के लिए खुद कोशिश है। इल्ला मा सआ, जो उसने सही की वही उसका अजर है, वही उसका सरमाया। तो आप अगर फॉर एग्जांपल फर्श बिछा रहे हैं मजलिस का और दर्स का, कोई नहीं आ रहा, आपका अजर महफूज है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमें, कि ये तो बातें बिल्कुल वाज़े हैं। यानी अच्छा, दूसरा पहलू ये कि यानी कि जो हुकूमत इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी अहमियत क्या है। हुकूमत इस्लामी की अहमियत यह है कि इंसान को खुदा ने एक माशरती मखलूक के तौर पे पैदा किया है। यानी इंसान इस तरीके से बनाया ही नहीं गया है कि आइसोलेटेड रहे, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो अपनी तमाम ज़रूरियात खुद से पूरी कर ले और ये कहे कि मैं एक कोने में जाके बैठ जाता हूँ और मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। यानी जो कपड़े हम पहनते हैं वो किसी और की मेहनत का नतीजा है, जो खाना हम खाते हैं वो किसी और की मेहनत का नतीजा है, जिस घर में हम रहते हैं वो किसी और की मेहनत का नतीजा है। तो इंसान को खुदा ने इस तरीके से बनाया, माशरत ज़रूरी है इंसान के लिए, ठीक है। और इंसान की जो तरक्की है, इंसान की जो तरक्की है वो दो मोड में होती है, एक अपने कल्ब के एतबार से और एक इज्तिमा के एतबार से। यानी हम सब मिलकर एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है इस बात का समझना। और अल्टीमेटली यही होना है, यानी कि जब हम ज़ुहूर इमाम की बात करते हैं तो ज़ुहूर इमाम के वक्त क्या होना है, ज़ुहूर इमाम के वक्त इंसान के फ़र्दी और इनफरादी तरक्की के साथ साथ इज्तिमाई तरक्की भी है, ये दोनों साइड बाई साइड चलती हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरी एक जो बहुत अहम बात है कि माशरा इंसान के लिए ज़र्फ़ है, वेसल है। अगर वेसल जहरीला हो जाए, आप खुद सेहतमंद रह के कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इस माहौल में जहर फैल जाए, आप कहें मैं तो अपना घर साफ रख रहा हूँ, क्या फ़ायदा होगा इस बात का, बचेंगे हम? ठीक है, तो इस वजह से जो हुकूमत इस्लामी की जो बात की जाती है वो इन इट्सेल्फ कोई गोल नहीं है, बल्कि गोल तक पहुंचने का एक इंतहाई अहम वसीला है। यानी इवन आप देखें ये घर एक ज़र्फ़ है, ये भी छोटी सी हुकूमत इस्लामी है, यहाँ पर इंतशार फैल जाए, मतलब शौहर एक तरफ जा रहे हों, बीवी एक तरफ जा रही हों, अम्मा अब्बा एक बात कर रहे हों, बच्चे कुछ कर रहे हों, क्या होगा? इतनी सी जगह में मुसीबत हो जाएगी ज़िंदगी गुजारना इस चार दीवारी के अंदर। तो इसलिए अगर आप इनफरादी तरक्की की, जैसे अब ईरान है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अच्छा, और हुकूमत इस्लामी का मतलब ये नहीं कि हर एक उतने आला मेयार पे मोमिन, लेकिन अब एक ज़र्फ बन चुका है वहाँ पे ना, यानी कि इस कुर्बानी और इनकलाब की वजह से ज़र्फ बन चुका है कि आपको मिसाल के तौर पर आप जब माशरे में निकलते हैं आपको हराम नहीं दिखता। आप समझते हैं कितनी बड़ी नेमत है इंसान के लिए? यानी आप सड़कों पे निकलें और हराम सुनें और देखें और एक ऐसे माशरे में हरकत करें जहां ये ना हो, आपकी अपनी तरक्की के लिए कितना बड़ा फर्क है इन दोनों दोनों बातों में, ठीक है ना? तो ये मतलब है मेरा हुकूमत इस्लामी के क़याम से, कि अगर आप यहाँ पर ओवरऑल माशरे का ज़र्फ़ वो नहीं बना सकते तो कम अज़ कम एक सबसेट ऐसा बनाइए कि जिसके अंदर हराम ना हो, जिसके अंदर गुनाह ना हो, जिसके अंदर मासीयत ना हो, जिसके अंदर लोग जब मिलें तो वो जो जुमला इमाम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा का बयान किया है कि दोस्त वो हो कि जिसको देखने से खुदा की याद में इजाफा हो और फ़िक्र आखरत बढ़े, दोस्त की तारीफ ये बयान की है। ये उसमें एग्जैक्टली रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल जो किसी इमाम ने, पांचवें या छठे इमाम ने बयान किया। कुरान ने बयान किया ना कि आप उसको छोड़ दीजिए, उठ जाएगी वहां से, बिल्कुल। और उसमें देखें अब ये यहाँ पर एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि अब लोग नहीं हैं, ये काम नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि लोग जैसे आपने कहा कि भाई हम समझा रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, हाँ ठीक है, उसमें अगर वो मुसलमान और मोमिन हैं तो उनसे हुस्न माशरत को तर्क ना करें, यानी ये नहीं कि मिलना जुलना छोड़ दिया या शक्ल या शक्ल नहीं, मिलना जुलने का मतलब ये नहीं है कि बैठ के उनके साथ चार घंटे वक्त सर्व कर रहे हैं, ये नहीं है। मिलने जुलने का मतलब ये है कि कभी मुलाकात हो गई तो सलाम सलाम दुआ कर ली, खैरियत पूछ ली, कभी उनके घर कोई मसला है, खुशी गमी है, उसमें शरीक हो गया, दैट्स इट। और उनको हर यानी कि एक लिहाज से ये बात वाजे करते रहना कि भाई ये मेरा रास्ता है, ये मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, और इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना तजुर्बा बताऊं कि बहरहाल अगर इंसान खुदा के लिए सख्ती इख्तियार करता है ना, उसका उसको बहुत फ़ायदा है, ज़ाती तौर से उसके ईमान को बहुत फ़ायदा होता है। सख्ती का मतलब यह है कि आप स्ट्रिक्ट हो जाएं, यानी बिल्कुल क़ुर्बतन इलल्लाह के भाई आप को मैंने इतना समझाया, तीन चार पाँच छः दफ़ा समझाया, आपको नहीं समझ में आता, अब मैं आपके साथ इन चीज़ों में शरीक नहीं हो सकता। मसलन फॉर एग्जांपल मिक्स गैदरिंग होगी, मैं नहीं आऊँगा, क्लियर। जहाँ पर पर्देदारी का लिहाज नहीं रखा जाएगा, जहाँ पर फॉर एग्जांपल तकरीबात, वैसे तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ हराम का एक ही मसला है मिक्स गैदरिंग का, या पाकिस्तान में दूसरा मसला उसका होता है टाइम वेस्ट करने का, रात दो दो तीन तीन बजे तक, कराची में मुझे पंजाब का नहीं पता। नहीं, मुस्लिमीन की या गैर मुस्लिमीन की? इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। ٹھیک ہے، کوئی نہیں مسئلہ بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی کہ دین میں ہر چیز موجود ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھے اپنے دور میں، تو جو، یعنی قرآن میں تو نہیں ہے لیکن احادیث میں یہ موجود ہے کہ جب ان کو پھینکا گیا تھا آگ میں، تو فرشتوں میں اس بات کی ہلچل مچ گئی تھی کہ یہ واحد موحد ہے زمین پر، توحید، یعنی جو حقیقتاً موحد ہے، یہ ایک شخص ہے، اور یہ ایک شخص بھی ختم ہو گیا تو یعنی کہ اگر کسی جگہ پر ایک بھی حقیقی مومن نہ رہے تو اس جگہ کے باقی رہنے کا جواز مٹ جاتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ امام کا وجود باقی سب کے وجود کو باقی قائم رکھتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسا بندہ خدا چاہتا ہے، جو حقیقی توحید چاہتا ہے، اگر وہ سب ختم ہو جائیں کسی جگہ سے، مطلب اس معاشرے میں بھی یقیناً ایسے کچھ لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے باقی سب چل رہے ہیں، کوئی نہ، منیمم 1-2% ہونے چاہیے، ورنہ گیا پھر خدا اس کو نہیں چھوڑتا اس جگہ کو. تو اسی لیے فرشتوں میں ہلچل مچی تھی، ہم مدد کر لیں، ہم ابراہیم کو آگ سے بچا لیں، ہم یہ کر لیں. اور پھر شاید جبرائیل یا کوئی اور فرشتہ جب ان کے پاس آئے تھے اور ان کا تھا کہ آ جاتا، وہ سب واقعات ہیں. تو یہ پرابلم نہیں ہے ایک یا دو یا چار، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان اس طرف چلے. اگر ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ چلے ہمیں اتنے لوگ بھی مل رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بارے میں، اور یہ سب چیزیں کافی مشکل ہیں. دیکھیں میں خود ابھی اپنے اندر نا لائف کے میں جس اسٹیج سے گزر رہا ہوں، اب مجھے اس طریقے سے محسوس ہونے لگا ہے کہ ناؤ اٹ از دا بگننگ آف دا اینڈ، بگننگ آف دا اینڈ. جو میرا یہاں پہ ٹینے ہو رہا ہے، جو میرا یہاں پہ جو بھی کام کرنے تھے، اب مجھے جس چیز سے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دنیاوی تعلقات میرے اندر بہت ڈیپ روٹیڈ ہیں. یعنی فار ایگزامپل، میں، ہم نے اپنی جو فیملی بلڈ کی اور ڈیولپ کی، ہم نے 24-25 سال گزارے، ساتھ گزارے. میں ہمیشہ ایک جملہ گھر میں کہتا رہتا تھا کہ بھئی ہمیں ایسے رہنا ہے، ہم 6 آدمی ایک ہیں، 4 بچے. اور اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ناؤ اٹ مے بی دا ٹائم آف ڈس انٹیگریشن، لوگ اپنے اپنے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں اندر سے اس کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں، اس فیلنگ کو. تو یعنی کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس پر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے، اور جتنی جوانی میں محنت ہو اتنی بہتر ہے. تو یہ سب لائف کے چیلنجز ہیں. اور اس کے بعد جیسے علماء کہتے ہیں کہ کوئی حادثہ نہیں ہے موت کی طرح، یعنی موت اور انتقال کے کمپیریزن میں کوئی ایونٹ نہیں ہے انسان کی زندگی کا. ہم جتنا بھی سوچ لیں، جتنا بھی پریپیئر کر لیں، جتنا بھی کر لیں، لیکن جب وقت انتقال آئے گا تو دیٹ ول بی سم تھنگ ٹوٹلی یونیک. تو اب وہ کیا چیز ہے، کس طریقے سے ہوگا، یعنی یہ سب ہمارے غور و فکر، ہم ان بیکار باتوں میں پڑے رہے. تو مقصد اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اجتماع کا یا حکومت اسلامی کا مقصد وہ ظرف بنانا ہے جس میں زہر نہ ہو، ٹھیک ہے. میں اکیلا نہیں چل پاؤں گا اتنا، یعنی میں اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ جاؤں اور عبادت شروع کر دوں اور جیسے ہی میں نکل کے باہر جاؤں میرا کام خراب ہو جائے. تو یہ میرے انٹرسٹ میں ہے نا کہ میرے پاس کم از کم 10-20-25 لوگ ایسے ہوں کہ جن کے ساتھ جب میں انٹریکٹ کروں تو میں اپنے مقصد کے رستے میں آگے بڑھوں، نہ کہ اس سے پیچھے ہٹوں گے. جتنا میں اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادتوں میں حاصل کرتا ہوں، باہر جاؤں سب برباد کر کے چلا ہوں. تو حکومت اسلامی کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی، یعنی کہ دوسروں کو تو فائدہ جو ہے سو ہے، لیکن وہ بھی الٹیمیٹلی اپنے ہی فائدے کے لیے. ہر جگہ ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بہت عجیب سی بتاؤں کہ ये भी ज़िंदगी का तजुर्बा सिखाता है कि असल प्रॉब्लम जो है ना वो इंसान के अंदर ही होती है। यानी जो लोग कुम चले जाते हैं नजफ में, वो भी फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो इससे, जो प्योरली इल्म दीन हासिल कर रहे हैं उनके लिए, जैसे इमाम खुमैनी ने, मेरा ख्याल है कि ये जो रिवायत मैंने बयान की ना इमाम खुमैनी की हुकूमत इस्लामी वगैरह, या उसमें कहीं मैंने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कितना कहा है दीनी तालिब इल्मों को, तुम लोग इस्तलाहात के चक्कर में कैद हो, तुम लोग लफ्ज़ सीख सीख कर अपने को बाफजीलत समझना शुरू कर देते हो, उसके बाद ये कि जब तुम्हें दो चार बातें पता चल जाती हैं तो अपनी बड़ाई के कायल हो जाते हो। मतलब एक चीज़ आप देखें ना कि जो आलिम है, मैं एक बात इस कदर मुझे ज़्यादा हिट करती है, वो जनाब रसूल खुदा का इनकिसार और आजिज़ी है अपने असहाब और लोगों के साथ। यानी अगर इंसान इस बात को थोड़ा भी समझता हो कि पैगंबर अकरम का मानवी और खुदा की नज़र में मकाम क्या है, उसके बाद आप जिस तरीके से झुकते थे और जिस तरीके से समेटते थे, और ये भी खुद हुक्म कुरानी है कि वक्फ़िज़ जनाहका बिज़्ज़ुल्ल या मिनज़्ज़ुल्ल लिल्मुमिनीन, अपने परों को यूं समेट दो, झुका दो। इन्हें जैसे ना मोमिनीन को खुदा ने मिसाल दी है कि जैसे चूजे की तरह है, अपने परों को जैसे मुर्गी होते हैं ना, समेट के और उनको अपने परों में ले लेता है। तो ये रसूल है कि जिस तरीके से आजिजी के साथ, मोहब्बत के साथ इंसानों को लेके चलना। तो बहरहाल, और अभी इसमें ये बात थोड़ी सी मुनाजरे की तरफ चली जाएगी, लेकिन बहुत ऐसे वाकयात हैं। अभी मैं सूरह तहरीम पढ़ रहा था जिसमें पैगंबर की दो अजवाज का जिक्र है। अब उसको अगर आप गौर करें तो कितना वो है कि खुदा बाकायदा पैगंबर को डांट रहा है, नहीं डांट रहा है कि तुमने तुमने कैसे उस चीज़ को हराम करार दे दिया जो हलाल है, और तुम फौरन कसम तोड़ो और ये और वो, और लेकिन आप कितना ज़्यादा अजवाज के आगे, तो वो सारे वाक़यात हैं। तो ये चीज़ें तो हैं कि आदमी, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो, यानी जो बात मैं कहना चाह रहा था कि इंसान अगर खुद मजबूत होता है ना, अब ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, अगर आप खुद मजबूत नहीं है तो बेहतर है कि लोगों के असरात से अपने को ज़्यादा बचाएं। अगर खुद मजबूत हैं, जैसे शहीद मुताहरी ने ये मिसाल दी है तकवा की और मुत्तकी इंसान की, कि तकवा मुत्तकी शख्स वो होता है कि जैसे एक डॉक्टर जिसने खुद वैक्सीन ली हुई हो और मरीजों का इलाज करे। तो अगर इंसान के पास खुद स्ट्रांग वैक्सीन नहीं है तो अपने को बचाए, अगर मुतासर होने के ज़्यादा खतरा आते हैं, ये हम सब बेहतर जान सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ईमान के अंदर इतना इस्तेहकाम है कि ये सब उल्टी पुल्टी बातों का मुझ पर असर नहीं है, यानी ईमान के इस्तेहकाम का मतलब होता है कि खुदा इंसान को वो बसीरत दे देता है कि वो गोया कि देख रहा होता है कि ये क्या है, जो कुछ लोग कर रहे हैं उसकी हकीकत देख सकता है उसको वो कर, तो उसके लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि यानी कि खुद रसूल खुदा की जो ज़िंदगी की मिसाल दी जाती है क़ब्ल अज़ एलान रिसालत, बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई कि जैसे पत्थरों के ढेर पर पड़ा हुआ हीरा, कि अगरचे कि वो भी एक पत्थर की ही तरह होता है, लेकिन कहाँ पत्थर कहाँ हीरा। ये तो है ही है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अगर दूसरों के लिए कुछ भी करते हैं ना, उसका आपको खुद बहुत फायदा है। अगर आपको वो तमाम चीजें आप जमा करें जो मैंने बयान की थी, जैसे मैंने आप लोगों को सूरह बलद सुनाई थी, 90 सूरह बलद, उसमें यह है कि खुदा ये कह रहा है कि इंसान के ज़िंदगी में जो हाई लेवल अचीव करने का तरीक़ा है वो क्या है, फ़क्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बतिन यतीमन ज़ा मक़रबा। फ़क्कु रक़बतिन, गर्दनों का आज़ाद कराना। इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू हाई लेवल, वाई दे डू नॉट गो टू हाई लेवल? फलक तहमल अकबा, अकबा यानी स्टीप, इक्तहाम, तेजी से चलना। ये लोग हाई लेवल तक क्यों नहीं भागते और दौड़ते पहुंचते हैं वहां पे? और वमा अदरा का मल अकबा, तुम्हें क्या पता कि वो बुलंद मकाम क्या है? फक्कु रकबतिन, गर्दनों का आजाद कराना। अगर आप किसी की गर्दन को जहालत से आजाद कराते हैं, यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट हाई लेवल ऑफ लिविंग। औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बतिन, या सख्ती और तंगी वाले दिन खाना खिलाना। यतीमन ज़ा मक़रबतिन, उस यतीम को जो कराबतदार हो। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबतिन, या वो मिस्कीन जो खाक में रुल रहा हो, खाक में पड़ा हो। तो ये कौन लोग हो जाएंगे? उलाएका मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिलमरहमा। अब देखें, ये प्योरली इज्तमाई काम है कि ये वो लोग हैं कि जो ईमान लाने वाले हैं और तवासौ बिस्सब्र करते हैं और तवासौ बिलमरहमा करते हैं। तो वो बात सही है कि फालतू गैदरिंग में जाके क्यों टाइम वेस्ट करें? आप गर्दनें आज़ाद कराइए। और यतीम के हवाले से भी जो बात की गई है कि यतीम खाली वो नहीं होता कि, यानी यतीम का भी मतलब जो अरबी ज़बान में है वो बेसरपरस्त है, कि जिसके ऊपर कोई गार्जियन ना हो। जो इल्मी एतबार से भी लोग यतीम होते हैं, फिक्री एतबार से भी लोग यतीम होते हैं, ज़ाहरी एतबार से भी लोग यतीम होते हैं। जिस यतीम को आप खाना खिला सकते हैं खिलाइए, इन्हें इल्म की गिज़ा दे सकते हैं इल्म की गिज़ा दें, मारिफत की गिज़ा दें, ज़ाहरी गिज़ा दें। ये तो बेस्ट ऑफ डीड्स हैं। तो इस तरफ जाए ना इज्तिमा में, ये खामोखा बैठ के लोगों के साथ वक्त बर्बाद करने से क्या है? उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं होनी चाहिए। तो इज्तिमाइयत का मतलब ये है कि इस तरीके से हमें इज्तिमाइयत की तरफ मुतवज्जे हों और इस पर काम करें। तो इसको तो खुदा ने वन ऑफ द बेस्ट इंसान के लिए अमल, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखें ना, रसूल खुदा ने, जो मैं कई दफ़ा बयान कर भी चुका हूँ, कि पहला हुक्म आया है तकरीबन 2 हिजरी में, 1 या 2 हिजरी में, जो पहला हुक्म हुक्म नमाज है, उससे पहले 13-14 साल क्या हो रहा था? यानी मक्के की पूरी ज़िंदगी में कोई शरीयत नहीं है उस लिहाज से जो हमारे पास है, यानी कि सिर्फ तौहीद है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, और मुकावेमत है दीन के रास्ते में, यानी कुर्बानी है, इस्तेकामत है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी शरीयत के नाम पे तो कुछ भी नहीं था। तो ये एक बात तो अपनी जगह बिल्कुल तयशुदा है कि, यानी आप इस बात को खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, कि जिस तरीके से हमको दीन बताया जा रहा है या दीन सिखाया जा रहा है, वो वर्क वर्क नहीं कर रहा ना। यानी इसी चीज़ को, इसी निज़ाम को पलटा है इनकलाब ने, लेकिन ख़ुद उसको कबूल करने वाले उसकी रूह के साथ बहुत थोड़े से लोग हैं। ठीक है, इवन ईरान में भी बहुत थोड़ी सी तादाद है कि जो उसकी उस रूह के साथ उसको एक्सेप्ट करती है और समझती है। तो ये मसला तो हर जगह है कि आप अगर ईमान पर काम नहीं करेंगे, आप अगर लोगों के दिलों को खुदा से करीब करने पे काम नहीं करेंगे, वो मुश्किल है उनके लिए। यानी फिर वो खौफ से तो शायद कर दें, अच्छा खौफ वाला अंसुर अब ख़त्म हो चुका है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि पहले जो था, मतलब एक चीज़ ये थी कि इन जनरल के माशरे में तकालीफ ज़्यादा थी, प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो वो चीज़ भी लोगों को दीन की तरफ मुतवज्जे करने का एक ज़रिया बन जाती थी, खुदा की तरफ। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, खुशहाली बढ़ गई है, ख़ास तौर से इन जैसे माशरों में, तो अब वो खौफ वाली बात भी वर्क नहीं करती। मौत तक सोचते सोचते फिर वही होता है ना, 60 साल के बाद आदमी सोचता है मौत बहुत। और दूसरा फिर वही होता है जो मैंने आप लोगों से कई दफ़ा बात की थी ना, कि उस वक्त तक पहुंचते पहुंचते आदमी इस काबिल ही नहीं है ना, उसके हाथ पैर मफलूज हो जाते हैं, वो फालिद ज़दा हो जाता है, वो चीज़ें समझ रहा होता है लेकिन वो एक्ट नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि एक पोलराइजेशन हो गई है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो बहरहाल अब उन चीज़ों से मुतासर नहीं है, या अली मदद और ये सब, जो पढ़ा लिखा तबका है वो डेफिनेटली इन्हीं चीज़ों की तरफ आ रहा है। लेकिन उनके लिए ज़ाहिर है बात बिल्कुल दूसरे तरीके से करनी पड़ेगी, फिर ये गुफ्तगू नहीं चलेगी उनके लिए। थोड़ा सा और डीपर एनालिसिस की तरफ जाए ना, तो ये हमारे किसी के हाथ में है ही नहीं, यानी इवन अगर हम अपने बारे में गौर करें तो हम इस जगह तक नहीं पहुंच सकते कि हम ऐसे क्यों हैं। तो ये यानी कि यानी फॉर एग्जांपल, अगर मेरा दिल चाहता है कि मैं कुरान पढ़ के गौर करूं, तो मैंने क्या उनसे ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से मुझे ये तौफीक मिल रही है? इन्हें खुद आदमी को यही समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ें जो है ना, ये किसी और स्केल या लेवल पे भी चल रही हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक जो बहुत अहम बात है ना, कि जिसको अगर हम ज़ाहरी तौर से काफ़ी गौर करें, और उसमें इरफान भाई देखें, वो वही वाली बात जो है ना, कि एक चीज़ जो देखी गई है कि जो लोग बंदगान खुदा की खिदमत खुलूस दिल से करते हैं ना, उन्हें खुदा की तरफ आने की तौफीक ज़्यादा मिलती है। यानी यहाँ पर हम कुछ वही बना सकते हैं, स्केची सी एक फिगर, क्योंकि हमें नहीं पता हो रहा था कि किसी के दिल में। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। यानी आगे के मरहलों पे जाना, थोड़ा सा भी इंसान आगे जाता है ना, आपको इनफैक्ट नज़र तो नहीं आ रहा होता ना कुछ भी, नहीं डार्कनेस नहीं है, मतलब यू आर फीलिंग समथिंग, यू आर, हम इस काबिल नहीं है कि अपने अंदर वो देख सकें या हम नूरे खुदा को देख सकें, हम निशानियों और आसार से चल रहे होते हैं। यानी जैसे बाज़ औक़ात उरफ़ा ने एक मिसाल दी है कि जो लोग ज़्यादातर हैं, अगर इवन मोमिन भी हैं, अच्छे मोमिन भी हैं, तो उनकी मिसाल उस अंधे की सी है जो लाठी टेक टेक के और टटोल टटोल के रास्ता चल रहा होता है। इट कैन बिकम फ्रस्ट्रेटिंग, स्पेशली जैसे वही मैं बात कह रहा हूँ कि जब आप उन रिलेशनशिप्स के टूटने की बात आती है, इन्हें प्रैक्टिकली आप और हम सोचें कि भाई हम कितना स्टैंड कर सकते हैं कि हाँ, अगर खुदा ये चीज़ चाह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में एक तब्दीली वाकई हो जाए, मैं कितना एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस बात को, कितना आगे जा पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है। तो इसमें है, तो मेरे ख्याल में तो बात सिर्फ एक ही है जो हम कर सकते हैं, वो ये कि अपने आप को ज़ाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा तज़किया और तरबियत के मराहिल से गुजारें, और दूसरा ये कि जितने भी लोग हमें इस तरीके से मिलें, उनके साथ मिलके एक इज्तिमा बनाएं, न कि इनफरादी तौर पे बैठे रहें। वो चाहे एक आदमी हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, जितने भी हों, यानी कि ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है अल्लाह के रास्ते में। ये मुझे समझ में आता है कि ये तरक्की के लिए जो है, और स्टेबल रहने के लिए और बाकी रहने के लिए, यही हमारे पास एक नुस्खा है, वरना चीज़ें फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, बस एक आपका सवाल था, मैंने जो आपने एक आयत भेजी थी, ये रिशान भाई ने एक आयत भेजी थी सूरह नूर 41, इसमें यह है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं देखते कि बेशक अल्लाह के लिए, यानी कि जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है, वो अल्लाह के लिए तस्बीह करता है, व तायर साफातिन, और परिंदे जब अपने पर फैलाते हैं, کل قد علم صلاته و تسبیحه، اور ان میں سے ہر ایک اپنی صلات کو، صلات سے مطلب پریئر یا نماز بظاہر، و تسبیحه اور اپنی تسبیح کو جانتے ہیں، واللہ علیم بما یفعلون۔ تو یعنی کہ علم ترا کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں کیا یہ کوالٹی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے، یعنی مخلوقات کی تسبیح کو دیکھ سکے کہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اور آسمان اور زمین میں اور پرندے اور وہ سب اپنی نمازیں۔ تو اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت سورۃ الاعراف میں بھی ہے کہ افلم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کہ کیا یہ لوگ آسمانوں اور زمین کی ملکوت میں نظر نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی، اچھا ملکوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملک یعنی کہ جو اپیرنٹ ہے، مٹیریلسٹک، ملکوت یعنی اس کے پیچھے جو حقیقت ہے۔ جیسے ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہر شخص کیوں توفیق رکھتا ہے اور توفیق نہیں رکھتا، اس کی وجہ اس کی ملک نہیں ہے، اس کی وجہ اس کی ملکوت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم لوگوں کی ملکوت دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو ہمیں بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شخص ایسا کیوں ہے، یہ شخص ایسا کیوں ہے۔ تو یعنی ایک حقیقت ہے جو ہر چیز کے پیچھے نا، ایک حقیقت ہے جو اس کو ڈرائیو کرتی ہے اور کنٹرول کرتی ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس ملکوت کا دیکھنا غیر معصوم کے لیے بھی پاسبل ہے۔ یعنی ایک تو جیسے سورہ انعام میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یعنی ہم نے دکھائی ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض۔ تو ابراہیم اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام کون ہیں؟ کہ جو آسمانوں اور زمین کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ آسمان اور زمین کی ظاہری شکل کے پیچھے جو حقائق ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ علم ہے جو خدا کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا ہے۔ جبکہ ہم کیا ہیں؟ ہم ظواہر میں بند ہیں۔ اور اگر ہم اپنے ایمان کے رستے سے آگے بھی بڑھتے ہیں تو تھوڑا سا فیل کر پاتے ہیں کہ اس کے بیونڈ کچھ ہے، یعنی ہمارے ساتھ کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے، یا روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے کہ جب ہم اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل، ایک جو بہت آبویس سی بات ہے کہ آپ لوگ اس معاشرے میں ایک عرصے سے زندہ ہیں تو یو آر اپ اگینسٹ کفار، مشرکین یا ایتھیسٹ، ٹھیک ہے نا، آپ ان کے بالمقابل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس بات کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگیاں اور آپ کی زندگیوں میں ایک فرق ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں نے دین کو اور خدا کو قبول کیا ہے اور جن لوگوں نے اس نظام کو رد کیا ہے، ان کی زندگیوں میں فرق ہے، ان کے سکون و اطمینان میں فرق ہے، ان کی زندگی کی برکتوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں ایک مضبوطی دیتی ہے، ایک دلاسا دیتی ہے کہ ہاں، یہ اس کے پیچھے حق ہے جو کچھ بھی میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں۔ یہ اسی طریقے سے جب آپ ظاہری دینداری سے آگے بڑھ کے معرفت کی طرف آتے ہیں، جو بات میں نے بار بار کہی کہ یہ لازمی ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی ہو۔ اگر آپ معرفت کی راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں، اگر آپ قرآن سے قریب ہو رہے ہیں، تو یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی ہو اور آپ کے اندر جو حالات ہیں وہ بہتر نہ ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں ہمارے لیے کہ جو، جن کے ذریعے سے ہم، جسے کہتے ہیں نا، رسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہم آسمانوں اور زمین کی تسبیح کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم پرندوں اور دیگر حیوانات کی خدا کی اطاعت اور عبادت کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن یہ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اٹ از پاسبل۔ آسمانوں، اور اگر ابراہیم نے آسمانوں اور زمین کی ملکوت کی رویت کی ہے، تم کم از کم اس پہ نظر کر سکتے ہو۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ نگاہ کریں، اور اگرچہ کہ آپ ہر ڈیٹیل کو نہیں دیکھ پائیں، لیکن آپ ایک چیز کا احاطہ کر لیں، آپ اس کے حوالے سے صحیح نظریات قائم کریں۔ آپ کے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ قرآن کریم میں نا کانٹیکسٹ بھی بہت اہم ہوتا ہے. یہ جو آیت ہے نا 41، یہ جسٹ آفٹر ہے آیات نور کے، یعنی 35 جو ہے جس میں جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاتن، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ خدا کے نور کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہیں. اور خدا کے نور کو حاصل کرنا صرف معصوم تک محدود نہیں ہے، غیر معصوم کے لیے بھی یہ راستہ کھلا ہے. یہ اہم بات ہے اور اس پر ہم نے کبھی بات کی نہیں ہے، میں خیال ہے تھوڑا آپ کبھی پاسنگ ریفرنس ہو. لیکن جو آیہ نور ہے نا، اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض کے بعد خدا نے اپنے نور کی مثال بیان کی ہے، مثل و نور ہی، اس کے نور کی مثل. اور اس میں عربی زبان میں ظاہر ہے کہ جو بہت اس کے زیر زبر کی باریکیاں جو ہوتی ہیں، مثل کا مطلب ہوتا ہے ایفیکٹ یا تجلی، مثل کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا یا شبیہ. ٹھیک ہے، تو خدا کی مثل ہے، مثل نہیں ہے، لیس کمثل ہی شیئن، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے خدا کو تشبیہ دی جا سکے، لیکن مثل ہے، تجلیات ہیں کہ جس پر خدا کا اثر اور افیکٹ اور وہ تمام چیزیں، جن چیزوں مثل و نور ہی، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یعنی ایک قسم انسانوں کی وہ ہیں کہ جو آسمان اور زمین کو ڈارک دیکھتے ہیں، کچھ نہیں ہے، اندھیرا ہے. جب آسمان کی طرف نظر کرو تو زیادہ تر اندھیرا ہی ہے نا یونیورس میں. تو ایک قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو اللہ کے نور سے روشن دیکھتے ہیں. لیکن اب جو سب سے عجیب بات ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ مثل و نور ہی، اس کے نور کی مثل یا تجلی، وہ کیا ہے؟ کیا وہ کائنات میں ہر جگہ اس طریقے سے موجود ہے ہر ایک کو دیکھنے کے لیے؟ ویئر یو کین سی دیٹ لائٹ آف اللہ، وہ لائٹ کہاں پر ہے جو آسمان اور زمین میں؟ مثل و نور ہی کمشکاتن، اس کے مثل اس کے نور کی یہ ہے، کمشکاتن کا یعنی گویا کے، ایز اف، مشکاتن، مشکات کہتے ہیں طاق یا طاقچے کو، یہ آیت ہے آپ لوگوں کے ذہن میں، طاق. فیہا مصباح، اس کے اس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجتن، اور چراغ جو ہے وہ ایک قندیل میں ہے، الزجاجتو کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. یعنی کیا مثال لی خدا نے، یہ مثل نہیں ہے، یعنی کہ اس کی اس طریقے سے سمجھو، مشکات یعنی تاقچہ ہے. تاق کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے آپ دیوار میں ایک کونے میں ایک وہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پرانے زمانے میں یہ چیز بنائی جاتی تھی تاکہ جب آپ کوئی بھی شمع یا اس قسم کی چیز روشن کریں تو وہ ہوا کے جھونکے سے بجھ نہ جائے، مطلب دیٹ از اے پروٹیکٹر آف دیٹ کینڈل، تاک ہے. اس کے اندر چراغ ہے، چراغ کس طریقے سے ہے؟ ایک قندیل، قندیل سمجھتے ہیں جو شیشے کا وہ ہوتا ہے نا، اس کی جس کے اندر وہ لیمپ جل رہا ہوتا ہے، تو وہ شیشے کا جو ظرف ہے وہ قندیل ہے، زجاجہ، وہ چراغ اس قندیل کے اندر روشن ہے. اور اس کو جب تم زجاجہ کو دیکھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے چمکتا ہوا تارہ. یہ کس چیز کی مثال ہے؟ یعنی اٹ از ناٹ ان دا پلیس ویئر یو کین جسٹ لے یور ہینڈ. اگر آپ ایک اس کو دیکھتے ہیں تو، یعنی اس میں دو باتیں ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اگر کوئی قندیل ہے جس کے اندر چراغ روشن ہے، तो अगर वो शीशा बिल्कुल साफ शफाफ है तो वो एक तारे की तरीके से उसमें से वो शुआएं निकल रही होती हैं। आप कभी इन्हें, ये एक मिसाल है उस शीशे की शफाफियत की, क्लीनलीनेस की। और ये भी है, अगर कौकबुन दुर्रीयुन की बात है तो उसका मतलब ये भी है कि दूर भी है। अब ये क्या चीज़ है, ये किस किस्म की मिसाल है अल्लाह ने अपने नूर की दी, कुछ है जहन में? ठीक है ना, यानी कि मिशकात, सदर सीना, कंदील जुजाजा कल्ब, यानी सीने में दिल, चिराग मारिफ इलाहिया, यानी अल्लाह के नूर तक अगर पहुंचना है तो यूनिवर्स में ट्रैवल करके नहीं पहुंच सकते, वही फिर बात विलायत तक आ गई। उन कुलूब से अपने ताल्लुक को पैदा करके पहुंच सकते हो जहां नूरे खुदा रोशन है। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि ये कि वो एक हाई हायर लेवल है, लेकिन इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोग मौजूद हैं ना, लोगों की दस्तरस में, जिन तक लोगों की पहुंच है। तो ये जो नूरानियत है, यानी कि जिस कल्ब में वो नूरानियत पैदा हो जाए, वो मलकूते समावात और अर्ज को देखने के काबिल है। अच्छा, और ये आयतें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे चली हैं कि जैसे ये चिराग है, चिराग के लिए फ्यूल चाहिए उसको रोशन रखने के लिए, वो फ्यूल कहाँ से आ रहा है? मिन शजरत मुबारकतन, एक मुबारक दरख्त से आ रहा है जो जैतून का है। जैतून से, इनफैक्ट आप ये ऑलिव ना ले मुराद, जैतून यानी रोगन ऑयल, कि एक ऑयल देने वाला मुबारक दरख्त है। ला शर्कियतिन वला गर्बियतिन, ना उसका झुकाव मशरक की तरफ है ना मगरब की तरफ, यानी किसी से भी बाइज्ड नहीं है, सिर्फ खुदा से वाबस्ता है, ना राइट ना लेफ्ट, ना मशरक ना मगरब। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? फी बुयूतिन, ये किन घरों में, ये ताकचे किन घरों में? कुछ घरों में अज़न अल्लाहु अन तुरफ़ा, अब ये वो मसला है कि जो मेरे और आपके हाथ से बाहर है। अज़न अल्लाहु, जिनके लिए अल्लाह ने परमिशन दी है, अन तुरफ़ा, कि उनको बुलंद किया जाए, यानी इस रूए ज़मीन पर कुछ घर ऐसे हैं कि जिनके लिए खुदा की परमिशन है कि वो बुलंद हो। बुलंद से क्या मतलब है? कि जैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस रूए ज़मीन पर जिन घरों में तिलावत कुरान होती है, अहले आसमान को वो उस तरीके से चमकते हुए नजर आते हैं ज़मीन पर जैसे ज़मीन वालों को आसमान पर तारे। वह युद्ध करा फी हसमहू, और अल्लाह का जिक्र किया जाए उसमें। अच्छा देखें, अब यानी कि ये बात अब वो तकरीबन हमारी उस गुफ्तगू से भी रिलेट हो जाएगी। असल क्वालिटी तो दिल की है ना, यानी वो ताकचा और कंदील, और यानी इसको अगर आप वो लें तो ताकचा यानी सीना, ये फजाए कल्ब, ये मिशकात है। जो कल्ब है वो जुजाजा है, कंदील, और इतना शफाफ है कि बिल्कुल उस पर कोई मैल या दाग नहीं है। उसके अंदर मिसबाह और चिराग है जो किससे रोशन है, वही के रोगन से, कि जो ना शर्की है ना गर्बी है। यानी अगर आप पैगाम वही को हटा दें तो हर चीज़ का ताल्लुक या इससे या वैसे किसी न किसी तरफ डलकी हुई, ये सिर्फ पैगाम वही है जो किसी से मुतासर नहीं है दुनिया की। ये उसका चिराग है, ये चिराग है, ये उसका फ्यूल है। अब बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी ना, अब देखें घर पे बात आई कि ये उन घरों में हैं कि जिन घरों के लिए खुदा ने परमिशन दी है कि इनको बुलंद किया जाए। इन घरों में किए जाने वाले जिक्र को खुद खुदा पसंद करता है। और फिर उसके बाद आयत यहां भी नहीं रुकी, रिजालुन, ये वो मर्द हैं, ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये कंप्लीट पिक्चर है कि ये वो मर्द हैं, ये इसलिए नहीं बैठ गए कि मेरे सीनों में नूर खुदा है। ला तुलहीहिम इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, इनको सही रास्ते से डेविएट नहीं करती। क्या चीज़? तिजारतुन वला बैउन, खरीदो फरोख्त और तिजारत, बिजनेस इनको डेविएट नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये लोग माशरे से कटे हुए नहीं हैं। इसका मतलब है ये लोग माशरे में मौजूद हैं, ये तिजारत करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, लेकिन इनके सीनों में वो नूर खुदा रोशन है कि कोई चीज़ इनको अपनी तरफ खींच नहीं सकती। ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, व इकाम सलात सलात कायम करने से, व ईता इस ज़कात ज़कात देने से, यखाफूना यौमन ततकल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, और उस दिन से ये खौफ रखते हैं कि जिस दिन क़ुलूब और अब्सार पलट जाएंगे, यानी यौम आखिरत। तो देखें ना, कंप्लीट पिक्चर है ये कि मैं और आप, जो नूर खुदा है जो हमारे कल्ब में है, रोशन है, ये हमें इस बात से नहीं रोकता है कि हम माशरे में ना जाए, इस बात से हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा होता है कि हम लोगों के साथ मामलात ना करें, लेकिन उनका फोकस टोटल वहां पर है, कोई चीज उनको लहव में नहीं डाल सकती। और उसके बरक्स कौन है, उसके मुकाबले में कौन है? ये भी आपको याद होगा कि हमने पहले बात की थी इस पे कि वल्लज़ीना कफरू, कफरू का मतलब है कि जो इस मकाम से इनकारी है, अमालुहुम कसराबिम, जो इस जगह से, जिसके पास नूरे खुदा नहीं है, ठीक है। अब बात सारी की सारी कहाँ पे आ गई? नूर पे आ गई। हमारे पास कितना सा नूर है कि थोड़ा सा हमें एहसास हो पा रहा है कि हाँ, चीज़ें वो नहीं हैं जो नज़र आ रही हैं, या हकायक वो नहीं हैं कि जो ये सब तागूत और शैतान हमको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम अभी इतना सा नूर रखते हैं, इतनी नूरानियत है, लेकिन जो इस निज़ाम को रिजेक्ट कर रहा है, नूर खुदा से उसने अपना हाथ हटा लिया, मुझे नहीं चाहिए। अमालुहुम, क्या वो अमल नहीं करते? अमल करते हैं, लेकिन उनके अमल की हकीकत क्या है? कसराबिन, गोया के एक सराब है, बकीअतिन, एक सहरा में, यहसबुहुज़्ज़मआनु माअन, जिसे प्यासा समझता है कि पानी है, हत्ता इज़ा जाअहू लम यजिदहु शैआ, यहाँ तक कि जब वहाँ चला जाए, आ जाए, तो वहां पर कोई चीज नहीं पाता। यानी कि ये भी कुरान के अजीब लताइफ हैं, लम यजिद हो शैआ, यानी ऐसा नहीं है कि कोई चीज वहां थी जो गायब हो गई है, लम यजिद हो शैआ, किसी चीज को नहीं पाता है, देर वॉज नथिंग। ये वही है हुसैन भाई जो आप इल्यूजन की बात कर रहे थे, इसको कहते हैं इल्यूजन, कुछ नहीं था जिसे वो सब कुछ समझ रहा था। तो दो किस्म के लोग हैं जो इस दुनिया में, मतलब ये आया नूर जो है ना, ये इंसानों को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। एक वो लोग हैं कि जो नूरानियत खुदा के साथ जिंदगी गुजारते हैं किसी भी लेवल पर, एक वो लोग हैं कि जो नूरानियत खुदा से अपने मुंह को मोड़ लेते हैं, आमाल दोनों कर रहे हैं, ठीक है, जिंदगी के कामों में दोनों लोग मसरूफ और मशगूल हैं। जो नूरानियत वाले हैं वो ऐसा नहीं है कि माशरे में मौजूद नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों के साथ मौजूद होने के बावजूद उनके दिल खुदा के साथ हैं, क्योंकि नूर खुदा रोशन है यहाँ पे, अब वो नूर खुदा के साथ देखते हैं। ये आइडियल और डिजायरेबल सिचुएशन है। और उनकी अलामत क्या है कि जब वो लोगों के साथ जाते हैं तिजारत और बै खरीदो फरोख्त में शिरकत करते हैं, तो उन्हें वो चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, उन्हें वो चीज़ राह खुदा से डेविएट नहीं करती। ये बेंचमार्क आप बना लीजिए इसको, इन आयतों को, और उस तरफ हम चलना शुरू हो जाएं, मतलब बेस्ट यही अप्रोच है। और इन द एंड जब कहानी ख़त्म होगी यहाँ की, तो क्या होगा कि ये वही जो नूर है मेरे और आपके दिल में, इसी के साथ हम आगे चले जाएंगे, बाकी ये तमाम चीज़ें रह जाएंगी। अब यानी कि इन तमाम चीज़ों का टेम्प्रेरी पर्पस था कि इज्तिमा का और माशरे का और लोगों का एक टेम्प्रेरी पर्पस था, वो पर्पस सर्व हो गया, आप आगे चले गए, बात ख़त्म हो गई। तो ये जो है ना, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हर चीज़ को उसके ट्रू पर्सपेक्टिव में देखना। यानी कि फॉर एग्जांपल, बस आखिरी एक दो जुमले में आपसे अर्ज कर दूं कि जो एक बहुत ज़्यादा जनरल पर्सपेक्टिव है कि दुनिया की ज़िंदगी बेकार है, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो और इसको तर्क कर दो और इससे, हालांकि जो ख़ास तौर से अहले बैत अलैहिस्सलाम का की जो तालीम है वो इससे बिल्कुल अलग है। वो ये है कि इट हैज़ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, लेकिन तुमको उसके स्कोप का पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक चीज़ की अहम, यानी हमारा दिमाग किस तरीके से सोचता है कि अगर कोई चीज़ अहम है तो वो हर वक्त यानी हमारे सर पे मुसल्लत रहे, अगर कोई चीज़ अहम नहीं है तो वो हर वक्त डिस्कार्डेड रहे, एंड सो ऑन। लेकिन ये दीन का और ज़िंदगी का निज़ाम जो है ना, ये इससे बिल्कुल अलग हट के एक चीज़ है कि इसकी मिसालें भी जैसे दी गई हैं कि जब आप खाना पकाते हैं, ये रसूल खुदा की एक मिसाल है जो आपने तकवा के हवाले से दी थी, कि जब आप खाना पकाते हैं तो क्या खाना पकाने में जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सब के सब बराबर होते हैं, और सबसे कम इंग्रेडिएंट क्या होता है? नमक होता है। लेकिन अगर आप उसको अपने खाने में से निकाल लें, या कहें कि जी ये तो इससे असल मज़ा आता है, तो जितने फॉर एग्जांपल मैं बिरयानी में चावल डालता हूँ उतनी नमक भी डालूंगा, तो सब बर्बाद हो जाएगा ना। मोमिन को ये बसीरत हासिल होनी चाहिए कि जिंदगी में, यानी पहली बात क्या, कि जिंदगी में कोई चीज भी बेकार नहीं है, कोई चीज भी बेकार नहीं है और लायानी नहीं है कि जिसको आप यानी कि अबस या इल्यूजन कह के रिजेक्ट कर दें। इल्यूजन सिर्फ यही है जो खुदा बता रहा है ना, ये जो शराब है कि यानी कि जो लोग खुद से बनाते हैं चीजें कि पैसा मेरी मुश्किल को हल कर देगा, या ये सब इल्यूजन है, बाकी ये इल्यूजन नहीं है कोई चीज़ भी। लेकिन इतनी तमीज़ होना चाहिए कि किसको कितना और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यानी मिसाल के तौर पर इस ज़िंदगी में एक काम है इबादत, एक काम है अल्लाह के बंदों की खिदमत। अब हम कहें कि भाई इबादत बहुत अहम है, अब इबादत ही किए चले जा रहे हैं, एक या कोई कहे कि नहीं, जो हमारे यहाँ एक बड़ा फेवरेट जुमला है कि अल्लाह के साथ गुनाह तो माफ़ हो जाएंगे, बंदों के गुनाह माफ़ नहीं होंगे, तो उसका खास ख्याल रखो। ये सब चीज़ें इंसान को गड़बड़ में डाल लेती हैं। तो इस दुनिया की ज़िंदगी की बे इंतहा अहमियत है, बे इंतहा अहमियत है, लेकिन विद इन अ लिमिटेड स्कोप। ठीक है, और ये स्कोप हमारी इस ज़िंदगी के ख़त्म होने के साथ ख़त्म हो जाएगा, कि बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे आप स्कूल या मदरसे में चंद साल गुजारते हैं और वो चंद साल आपकी बाकी की ज़िंदगी के 50 सालों को डिटरमिन करते हैं। तो कोई भी ये नहीं सोचता कि मुझे स्कूल में रहना है ना, यानी कोई भी ये नहीं सोचता है कि ये मेरे रिहाइश की जगह है, ये मेरा सब कुछ है। हर एक को पता है कि यहाँ मुझे तरबियत हासिल करना है, और हर एक को ये बात समझ में आती है कि यहाँ की तरबियत मुझे बाकी ज़िंदगी में काम आएगी। वही वही फॉर्मूला है। जी, फिर नमाज का